सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धियेलत्थसौवता तिहुवनशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवनभवनपसर्य पच्चक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणखगणिहाये णुत्तारियमोहसेन्नशिरणिवहो आयिरियराउपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अण्णानन्दयारे अणोरपारे भमन्त भवियाणम् निकहो पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहत्युवति सा विनडिय तिहुवनभवियाणसुठुरायेण परिठवियाधमपवा सुवजलवाणपयाणेन सन्धारियशीलहरा उत्तारियचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सौवे शिवसुहपहर्षण्ठियाहु निगलियभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता हैं पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब ये जो हमारी नौवीं पुस्तक है उसमें चतुर्थ खंड कृति अनुयोग द्वार, कदि अनुयोग द्वार उसको कहा है, उसकी अभी हम बात यहाँ देख रहे हैं। अभी हम पृष्ठ संख्या 10 पर आ गए। कल हमने देखा था ये तीन नंबर का, यहाँ का तीन नंबर की गाथा जो भगवती आराधना की उद्धृत की थी, उसमें लिखा है ध्यान में मन लगाने वाले क्षपक के लिए यह लोक ध्यान के आलंबनों से परिपूर्ण है। लोक में से कोई भी चीज़ ध्यान का, यानी छह द्रव्य में से कुछ भी ध्यान का आलंबन हो सकता है, उसका विषय हो सकता है। राग रहित तो किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उसको ध्यान कहा है। हम भी सबको जानते रहते किसी एक एक चीज़ को, परंतु राग द्वेष सहित जानते रहते हैं, उसमें सुख या दुख की अनुभूति करते रहते हैं, तो वह आर्त और रौद्र ध्यान हो जाता है। यह शुक्ल ध्यान की बात है, क्षपक की बात है ना, शुक्ल ध्यान है उनके। ध्यान में ध्याता जो जो मन से देखता है, अर्थात जिस जिस वस्तु का मन से विचार करता है, वह वह आलंबन हो जाता है। किसी चीज पर को जानना ये कुछ राग का कारण है ही नहीं है, ये बात यहाँ से भी सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, शंकाकार जो शंका पूछ रहा है यहाँ से बढ़ेंगे अभी आगे। शंका, बुद्धि से जल में, स्थल में अथवा आकाश में संकल्पित जिन चार प्रकार के निक्षेपों में से किसमें अंतर्भूत है? जिनेंद्र भगवान के बारे में अभी हम निक्षेप लगा रहे हैं, उन निक्षेपों की यहाँ चर्चा चल रही है। उसमें शंकाकार पूछता है कि जल में, स्थल में और आकाश में संकल्पित, संकल्पित है ना मन के द्वारा किया ना, बुद्धि से जिसकी कल्पना की जाती है उसको संकल्पित कहा। ऐसे जो जिन हैं, वो जो अभी हमने चार निक्षेप देखे हैं, कौन कौन से आपको याद है? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो उसमें से कौन से निक्षेप में वे अंतर्भूत है, उसमें गर्भित हो जाते हैं, किसमें उनको इंक्लूड करना है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। उसका समाधान नो आगम भाव निक्षेप में, क्योंकि वह उपयुक्त स्वरूप है। उपयुक्त स्वरूप है ने उस रूप परिणत है, हमने देखा था नो आगम भाव निक्षेप में उसको लेना है। भाव निक्षेप हम वर्तमान उस रूप परिणत को लेते हैं, उसमें आगम में आगम को जानकार और उस रूप परिणत उसमें उपयुक्त जीव लेना था। नो आगम में जिनेन्द्र भगवान को लिया, या जो जीव है जिन अवस्था रूप से जो परिणत है उसको लिया था नो आगम भाव में। देखो कल का निकालना, नो आगम भाव निक्षेप लिखा नहीं आगम भाव निक्षेप में तो शास्त्र का जानकार होगा और उस रूप परिणत होगा। अब यहाँ जिनेन्द्र भगवान है प्रत्यक्ष, तो उनको कौन से जिनेन्द्र करना, देखो अच्छा ये उपयुक्त वाले लिए क्या भाव निक्षेप में, क्योंकि वह उपयुक्त। देखो यहाँ तद व्यतिरिक्त जो होता है ना वो कौन सा भेद है, कौन से निक्षेप का भेद देखा था हमने तद व्यतिरिक्त, ये ज्ञायक वगैरह वो द्रव्य निक्षेप की बात है। हाँ देखो ये भाव निक्षेप की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ ये भाव निक्षेप की बात निकालना। सातवें पृष्ठ पर सबसे अंतिम लाइन, आगम और नो आगम के भेद से भाव जिन दो प्रकार के हैं, मिला सबको। जिन प्रावृत का जानकार, जिनेन्द्र संबंधी जो शास्त्र है आगम है उसके स्वरूप को कथन करने वाले, उसका जानकार और उसी में उपयुक्त, उसको आगम भाव जिन कहा। और नो आगम भाव जिन किसको कहा, उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से दो प्रकार का है। जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव उपयुक्त भाव जिन है। अच्छा ये बुद्धि से कल्पना करने वाले जीव की यहाँ प्रश्न पूछा है। या फिर हम शंकाकार की शंका पढ़ते हैं 10 पेज पर, और फिर हम ये अपना भेद फिर दोबारा देखेंगे। उसी को बता रही हूँ, पहले शंका देखना, मैं जो जो बात बताती हूँ ना उसको पहले देखना। 10 पेज पर शंकाकार की शंका देखना पहले, देखो उसी को मैं फिर दोबारा समझाने वाली हूँ। बुद्धि से यानी मन से कल्पना से करें ना, जल में स्थल में आकाश में संकल्पित जिन, यानी ये हमारे जो मन में जो जिनेन्द्र भगवान है वो कौन से है, ये बात हमारे बुद्धि में जिनको हमने संकल्प किया है वो जो कल्पना वाले जिन है वो कौन से है, तो उसको अभी हम 8 पृष्ठ पर देखते हैं। आठ पर पहले लाइन में नो आगम भाव जिन ये दो प्रकार के बताए थे, उपयुक्त और तत्परिणत। उसमें से जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ग्रहण करने वाला ज्ञान है ने उसको समझने वाला, उसको बुद्धि में लेने वाला ज्ञान, तो जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव, यानी जिसने अभी जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप अपने ज्ञान में ले लिया है उसमें उपयोग है उसका। अभी हमारे सामने जिनेन्द्र भगवान नहीं है परंतु हम मन से उनकी कल्पना करते हैं ना। हाँ जैसे अभी विदेह क्षेत्र है उसमें इतने तीर्थंकर विराजमान है, ये हमारे मन में जो हमने धारण किया है वो कौन से हो गए, नो आगम भाव जिन उपयुक्त वाले। फिर से जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव उपयुक्त भाव जिन है, और जो स्वयं जिनेन्द्र भगवान है ये लिखा ना जिन पर्याय से परिणत जीव, यानी जो अभी 13वें गुणस्थान से परिणत हुए हैं ऐसे जो जीव है वे तत्परिणत भाव जिन है। तत् यानी उस रूप परिणाम परिणमन जिनका हुआ है, जो जिनेन्द्र रूप अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे जीव स्वयं कौन है? तत्परिणत भाव जिन। और हम जब मन में कल्पना करते हैं तो वो कौन से है? हाँ, उपयुक्त नो आगम भाव जिन। नो आगम भाव जिन करना, नो आगम उपयुक्त भाव जिन, बराबर। अभी ये 10 पेज पर यही समझाया था, देखो अभी हम निकाले फिर दोबारा पेज नंबर 10। शंकाकार ने क्या पूछा था? बुद्धि से जल में, स्थल में अथवा आकाश में संकल्पित जिन चार प्रकार के निक्षेपों में से किसमें अंतर्भूत है? कौन से चार निक्षेप? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपों में से कौन से है? तो कहेंगे भाव निक्षेप है। परंतु भाव निक्षेप के भी भेद बहुत है, एक आगम है, एक नो आगम है। नो आगम में भी उपयुक्त है और तत्परिणत है, तो इसमें से कौन से है? तो उसको कहते हैं समाधान, नो आगम भाव निक्षेप में, क्योंकि वह उपयुक्त स्वरूप है। अपने ज्ञान में उनको हम ले रहे हैं ना, तो ये उपयोग स्वरूप है, उपयुक्त स्वरूप है। यह नो आगम भाव निक्षेप स्थापना नहीं है, इसको हम स्थापना निक्षेप नहीं कह सकते, क्योंकि स्थापना किसी अन्य चीज में अन्य चीज की स्थापना करते हैं और उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, वो बात यहाँ नहीं है। हमने मन के द्वारा उनको धारण किया है, ज्ञान में ले लिए है ना, इसको स्थापना नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य द्रव्य में जिन गुणों के आरोप का अभाव है। अन्य द्रव्य ने जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई थी और उसमें हमने जिनेन्द्र भगवान के गुणों का आरोप किया, अध्यारोप की बात आई थी ना कल, तो वहां हम स्थापना जिन कहेंगे। परंतु जहां ऐसा नहीं, अभी हमने तो मन में जिनेन्द्र भगवान के गुणों का स्मरण किया, किसी वस्तु में उसको स्थापित नहीं किया, ज्ञान में धारण किया है, तो ये नो आगम उपयुक्त भाव जिन हो गए। इस कारण इसको अर्थात संकल्पित जिन को भी किया गया नमस्कार सफल है यह सिद्ध हुआ। क्या कहते हैं? संकल्पित जिन्हें जिनेन्द्र भगवान का जैसा उनके गुण है, जैसा स्वरूप है, वैसे अपने मन में धारण करना, ज्ञान में ले लेना, उसको भी यहाँ नमस्कार, यानी वैसे उन जिनों को किया हुआ नमस्कार भी सफल है, क्योंकि इस नमस्कार का फल हमने देखा था कर्मों का क्षय, कल बात बहुत विस्तार से हुई थी अपनी। तत्परिणत में जैसे महावीर भगवान है तो वो तत्परिणत जिन हो गए, सीमंदर भगवान है वो तत्परिणत है ना, उस रूप परिणत हुए है जीव, वर्तमान में वे जिन है तो उसको हम तत्परिणत जिन कहेंगे। विशेषार्थ, हाँ, तत्परिणत भाव जिन, तत्परिणत, हाँ, नो आगम तत्परिणत भाव जिन। हम मन में जो संकल्प करते हैं, अभी हमारे घर में मूर्ति नहीं है या हम कहीं ऐसे ठिकाने हैं कि जहाँ मंदिर भी नहीं है उपलब्ध, तो हम मन में संकल्पना करेंगे उनकी और उनको नमस्कार करेंगे। नमस्कार ने केवल वो हाथ पैर की क्रिया नहीं है, हाँ, तो उसको भी, उस नमस्कार को भी सफल कहा है। तो हाँ, नो आगम उपयुक्त भाव जिन, उपयुक्त तो नो आगम भाव जिन। नो आगम के दो भेद है, उपयुक्त और तत्परिणत। इसमें से ऐसा उल्टा रास्ता नहीं निकालना, चलो अच्छा हुआ मंदिर जाने का कष्ट हमारा बच गया। यदि अभिप्राय में ऐसा हो तो बाकी सब में भी ऐसी संकल्पना से अपने आप सुख प्राप्त कर लो। विशेषार्थ, काष्ठ व वस्त्रादि रूप, यानी कोई लकड़ी की वस्तु है या वस्त्र से बनाई हुई, तदाकार या अतदाकार वस्तु में, जैसे हमने देखते हैं, जैसे हम वो शतरंज खेलते हैं ना, तो उसमें शतरंज में हाथी घोड़ा, हाथी का आकार तो है ही नहीं है, फिर भी उसको हम हाथी कहते हैं, अतदाकार कहते हैं उसको, कोई कास्ट की वस्तु है तो वो जो जैसे अभी किसी व्यक्ति विशेष की उसमें स्थापना की, हमने कहा कि ये राजा है, तो राजा जैसा अगर हम उसमें वो कास्ट की बनाते हैं तो हमने उसको राजा कहना, वो तदाकार कहता है। और वो केवल ऐसे खाली लकड़ी ले ली, हमको बच्चों को समझाना है या कुछ करना है तो पत्थर के दो चार टुकड़े लिए, ये राजा है, ये उसका प्रधान है, ये रानी है। जैसे हम ये खेलते ना क्या कैरम में, वो रानी किसको कहते, वो सब तो इक्वल है, एक साइज के ऐसे गोल गोल है, तो उसको लाल रंग दिया तो वो क्वीन हो गई। इस तरह से तदाकार और अतदाकार वस्तु में जो अन्य किसी नहीं, जो किसी अन्य पदार्थ की कल्पना की जाती है वह स्थापना निक्षेप कहा जाता है। ये तो आसान है ना, हमने बहुत बार देखा भी है। इस प्रकार स्थापना में दो पदार्थों का होना आवश्यक है, ये बात महत्व की है। अभी नहीं, नहीं स्व नहीं, अभी एक ये वस्त्र है बराबर, तो हम बचपन में ऐसा कुछ उसका बहुत ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस करके बाद में कोई ऐसी चीज बनाते थे, तो ये चूहा है देखो, तो हमने एक है पदार्थ वस्त्र और दूसरा पदार्थ है चूहा। चूहे की इस वस्त्र में हमने गांठ मार दी और इसको कहा ये चूहा है। तो इसमें वस्त्र में नहीं अतदाकार हुआ ना, ये चूहे जैसा नहीं है ना। यदि हम ये कपड़े का बिल्कुल चूहे के जैसे वो खिलौने बनाते हैं, अभी खिलौने बनाते हैं वो सॉफ्ट टॉयज वगैरह होते हैं, तो जैसा वो प्राणी है वैसा ही आकार बनाते हैं, और उसमें हम ये रैबिट है ये जो कुछ ऐसा उसमें, वो भी स्थापना ही है, वो सचमुच रैबिट थोड़े ही है, बिल्कुल हुबहू उसके जैसा बनाया है हुबहू, तो हम उसको कहते हैं तदाकार स्थापना। और उससे ऐसा आकार नहीं है फिर भी हम ये चूहा ऐसा कहेंगे तो वो हो गई अतदाकार स्थापना। दो वस्तु है ना, एक चूहा और एक वो कुछ वस्त्र की बात है या कोई लकड़ी की वस्तु है। परंतु यहाँ यहाँ ऊपर की बात जो होती उपयुक्त की बात चल रही ना, वो नवागम उपयुक्त वाला, यहाँ चूंकि बुद्धि से यानी मन के द्वारा जलथलादि में की जाने वाली जिन की कल्पना यानी जिनेन्द्र की कल्पना में दो पदार्थों का अस्तित्व है नहीं, एकमात्र जिनेन्द्र भगवान ही है और उन्हीं को हमने ज्ञान में ले लिया, अतः वह स्थापना नहीं कहला सकती। किंतु जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत होने के कारण उसे उपयुक्त नुआगम भाव जिन कहना ही उचित है। देखो पीछे पृष्ठ 8 हमने देख भी लिया। हाँ नहीं नहीं स्थापना नहीं की है ये, यहाँ जिनेन्द्र भगवान है ऐसा केवल उसने संकल्प किया है, मन से संकल्प किया है, मन में है वो, ज्ञान में है जिनेन्द्र भगवान, वो वस्तु में ये जिनेन्द्र भगवान है ऐसा उसके साथ उपचार नहीं कर रहे, वो जल को नमस्कार नहीं कर रहे, जल में है ने, जैसे हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां उस भगवान को याद करके उस क्षेत्र को वंदन क्यों करते हैं, वो शिखर जी के पहाड़ को क्यों वंदना करते हैं, उस स्थल में हमने जिनेन्द्र भगवान की कल्पना की है, वहां से मोक्ष गए ना उनको याद किया, वो स्थल को नहीं नमस्कार किया, जिनेन्द्र भगवान को उसमें हमने संकल्पित किया है, अपने ज्ञान में उनको धारण किया है। हाँ क्षेत्र की पूजा करते हैं वो भी वहाँ विशिष्ट स्थान से हम उनकी याद करते हैं, आकाश हाँ विशिष्ट स्थान को हम क्यों पूज्य कहते हैं, उस स्थान में जिनेन्द्र भगवान को नहीं स्थापित किया है, वहाँ से जिनेन्द्र भगवान मोक्ष गए थे तो हम कल्पना वो जिनेन्द्र भगवान की करते हैं, वो ज्ञान में लेते हैं उसको, किसी सामने वाली चीज में ये जिनेन्द्र भगवान है ऐसी नहीं, ऐसा अगर कहेंगे वो स्थापना हो जाएगी, जैसे स्थापना करते हैं ना कोई लौंग रख देते हैं ठोने पर और फिर उसको जिनेन्द्र भगवान जैसी पूजा करते हैं, फिर उसमें पानी भी डालते और फिर वो उसके जैसे गंधोदक लेते वैसे उसके साथ उपचार करते हैं, वो बात नहीं है। सामने साक्षात जहाँ जिस मूर्ति में स्थापना की है उसके सामने फिर ये ऐसे दोबारा, उसका भी निषेध है शास्त्र में, फिर भी पद्धति चलती है तो चलती है। हाँ, इस सूत्र के द्वारा पांच गुरुओं और उनकी स्थापनाओं को नमस्कार किया गया है क्योंकि यहाँ सभी की संभावना है। नमो जिनानम सूत्र की बात यहाँ चल रही है। नमो जिनानम कहते ही पांचों ही गुरुओं को, कौन से पांच गुरु? हाँ, पांचों परमेष्ठी को यहाँ पांचों गुरु का और उनकी स्थापनाओं को नमस्कार किया है क्योंकि यहाँ सभी की संभावना है। वह इस प्रकार से अब यहाँ समझा रहे, सकल जिन और देश जिन के भेद से जिन दो प्रकार के हैं। हाँ, यानी अरिहंत सिद्ध को गुरु भी कहा और उपाध्याय साधु आचार्यों को जिन भी कहा क्योंकि वो एक देश जिन है ना। तो सकल जिन और देश जिन, यानी पार्शल है ना, वो भेद से जिन दो प्रकार के हैं। जो घातिया कर्मों का क्षय कर चुके हैं वे सकल जिन हैं। वे कौन हैं? अरहंत और सिद्ध, यानी वो अघाती का भी नाश नहीं हुआ फिर भी उनको जिन कहा, तेरहवें गुणस्थान से जिन कहने में आता है। इतर ने आचार्य उपाध्याय और साधु देश जिन हैं क्योंकि उन्होंने तीव्र कषाय इंद्रिय एवं मोह को जीत लिया है। शंका, सकल जिन को किया गया नमस्कार पाप का नाशक भले ही हो क्योंकि उनमें सब गुण पाए जाते हैं, किंतु देश जिनों को किया गया नमस्कार पाप प्रणाशक नहीं हो सकता क्योंकि इनमें वे सब गुण नहीं पाए जाते हैं। ये अरिहंत सिद्धों का नमस्कार तो करना तो वो तो फल रूप होगा, परंतु इन अन्य साधुओं को किया हुआ कैसे हो सकता है उसका समान नहीं, क्योंकि सकल जिनों के समान देश जिनों में भी तीन रत्न पाए जाते हैं। कौन से तीन रत्न? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और तीन रत्नों के सिवाय देवत्व के कारणभूत अन्य कोई भी गुण सकल जिनों में नहीं पाए जाते हैं। उन्हें भी जो नमस्कार करते हैं, हम कहते ना वितराग और विज्ञानता, तो उसमें ये तीनों रत्न आ गए। उन्हें भी जो नमस्कार करते हैं वो तीन रत्नों के लिए, उनमें देवत्व पाया जाता है क्योंकि अन्य गुणों की उनमें उपलब्धि नहीं होती। इसलिए सकल जिनों के नमस्कार करने के समान देश जिनों को नमस्कार करना भी सब कर्मों का क्षय कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसा निर्णय होना चाहिए कहते हैं। शंका, सकल जिनों और देश जिनों में स्थित तीन रत्नों के समानता नहीं हो सकती क्योंकि संपूर्ण और असंपूर्ण की समानता का विरोध है। वहां तो ज्ञान दर्शन आदि संपूर्ण है, पूर्ण विकसित है, और यहाँ उसके अभी है नहीं, आवरण है, तो उसकी समानता कैसे हो सकती है? संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य असंपूर्ण रत्नत्रय नहीं करते क्योंकि वे असमान है। कौन सा कार्य की बात चल रही है? हम उनको नमस्कार करते हैं तो वे हमारे कर्मों का नाश कैसे है, उसका कार्य कहा ना, उसका समान नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन और चारित्र के संबंध से उत्पन्न हुई समानता उनमें पाई जाती है और असमानों का कार्य असमान ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्या कहते हैं? असमान अलग अलग चीजों का कार्य अलग अलग ही हो ऐसा नहीं है, समान भी हो सकता है कार्य, क्योंकि संपूर्ण अग्नि के द्वारा किया जाने वाला दाह कार्य उसके अवयव में भी पाया जाता है। कोई भली बड़ी आग है तो उसमें हमने कोई लकड़ी डाली तो वो जलती है, ये उसका कार्य हुआ। और छोटी अग्नि है कहीं पर और उसके हमने उसमें वो लकड़ी पकड़ ली, वो भी जल जाएगी। एक तो बहुत बड़ा दावा नल था उसमें डाला था, और एक अभी अपने गैस पर रखी हमने, वो भी जल गई। तो दोनों का कार्य समान है। संपूर्ण अग्नि के द्वारा किया जाने वाला दाह कार्य, दाह कार्य यानी जलाना, उसके अवयव, उसका कौन सा अवयव? अग्नि का अवयव है छोटी अग्नि, अवयव में भी पाया जाता है। अथवा अमृत के सैकड़ों घड़ों से किया जाने वाला निर्विषीकरणादि कार्य, निर्विषीकरण यानी उसका विष नष्ट करना। अमृत का ऐसा स्वभाव है कि वो विष को नष्ट कर देता है, तो सैकड़ों घड़ों से भी वो विष नष्ट हो जाता है। और वही कार्य चुल्लू भर अमृत में भी पाया जाता है। वो गुण तो दोनों में है, तो थोड़े से अमृत से भी वो निर्विषीकरण का कार्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देश जिनों में स्थित तीन रत्नों का सकल जिनों में स्थित रत्नत्रय से कोई भेद नहीं है। अपनी भाषा में हम कहेंगे, मुनियों का जो सम्यक दर्शन है और भगवान का जो सम्यक दर्शन है, उसमें क्या भेद है? जिस शुद्धात्मा में स्वस्थापित किया है, मुनियों की बात छोड़ो, सम्यक दृष्टि ने भी, जिसमें उसने स्वस्थापित किया है, क्या भगवान उसके अलावा अन्य किसी में स्वस्थापित करेंगे? ये दृष्टि यानी क्या है, दर्शन यानी श्रद्धा, किसमें? स्व और पर की। तो जिसको सम्यक चौथे गुणस्थान वाले ने स्व माना, मुनियों ने स्व माना, तो केवल ज्ञान होने पर कोई अन्य चीज में स्व मानेंगे कि स्व वही रहेगा? वही होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा ना। शुरू में जब सम्यक दर्शन हुआ था तो जो जिनेंद्र भगवान का स्व है वैसा ही स्व इसने अपने के लिए मान लिया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्व और पर में कोई भेद नहीं है, तो स्व को स्व मानना और पर को पर मानना इसमें कोई भेद नहीं। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, इसमें कोई भेद नहीं। ये तीन रत्नत्रय में कोई भेद नहीं कहा ना, देखो, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर समस्त पदार्थों से संबद्ध होने की अपेक्षा समानता पाई जाती है। मुनियों की जो आत्मस्थिरता है और वहां भी उनकी अपने आत्मा में स्थिरता है, क्योंकि मुनि अवस्था ही हमने किसको कही है? ये बाह्य व्रतादि पालन करने को मुनिपना थोड़ी कहा है। तो रत्नत्रय जिसको निश्चय रत्नत्रय की जो बात है और भगवान के जो रत्नत्रय, उनमें कोई असमानता नहीं उस अपेक्षा से, इसलिए दोनों का कार्य भी समान पाया जाता है। ये बात हमने बहुत विस्तार से देखा था पहले भाग में, पहले भाग उसको निबद्ध मंगल अनिबद्ध मंगल में बताया था। अब फिर पढ़ना आज वो अनिबद्ध मंगल क्यों कहा है उसको। पहला ही सूत्र है अपने षटखंडागम का, षटखंडागम का पहला ही सूत्र है ये नमोकार मंत्र, उसमें ही आया था नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, और उस पर बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई अपनी वहां पर। वो निबद्ध है कि अनिबद्ध है उसकी भी चर्चा आई है, कल पूछूंगी मैं आपको। उसकी भी चर्चा आएगी आगे, देखो। और आविर्भाव और अनाविर्भाव से किया गया भेद स्वरूप से उनकी समानता का विनाशक नहीं है। आविर्भाव के अगेंस्ट अभी आविर्भूत नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है। ये आविर्भूत और तिरोभूत ऐसे दो शब्द समय सार में आए हैं। अभी ये अनाविर्भाव ने अभी प्रकट नहीं हुआ है परंतु होने वाला है। तो आविर्भाव व अनाविर्भाव से किया गया भेद स्वरूप से उनकी समानता का विनाशक नहीं है। स्वरूप तो वही का वही है, दोनों का ही स्वरूप ऐसा ही है। एक में वो जिन अवस्था प्रकट की है और एक की एक देश प्रकट हुई है, परंतु उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है।
ये आविर्भाव का अर्थ यहाँ अभी प्रकट नहीं हुआ है और अगला जो है अन आविर्भाव यानी जो प्रकट हुआ है, ऐसे दो प्रकार। हाँ? नहीं,
आविर्भाव ने प्रकट, तिरोभाव ने ढकना। आविर्भाव ने जिनेन्द्र भगवान का आविर्भूत है यानी प्रकट है, और अन आविर्भाव ने प्रकट नहीं है, मुनियों के प्रकट नहीं है, एक देश प्रकट है उनका।
अच्छा, आविर्भाव यानी जिस प्रकट, जो प्रकट हुआ
प्रकट
है
हुआ,
और अनिर्भाव अनाविर्भाव
अन आविर्भाव
यानी अभी प्रकट नहीं हुआ है। यानी ये क्रम उन्होंने उल्टा दिया है।
नहीं, सकल जिन और एक देश जिन ऐसा ही क्रम लिया ना, सकल जिनों के प्रकट है और एक देश जिनों का प्रकट नहीं है। देखना पहले, नहीं उसकी बात नहीं छोड़ दी, शंका कारण क्या पूछा है, सकल जिन और देश जिन उसमें संपूर्ण और असंपूर्णता की समानता का विरोध है। संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य असंपूर्ण नहीं हो सकता। हाँ नहीं, वो तो समाधान करने में आगे पीछे लिया है, उसके साथ उसको नहीं लेना। आविर्भाव का अर्थ ही होता है प्रकट। तो किस में प्रकट है, तो जिनेन्द्र भगवान में। तो भले उसके सब पहले वाक्य में उसका उल्टा क्रम है, इसका अर्थ यह नहीं कि ये आविर्भाव मुनियों के लिए लिया है। हाँ, क्योंकि जिन भगवान में तो अनाविर्भाव की कोई बात ही नहीं है, स्वरूप तो पूर्ण प्रकट ही है, है ना। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, क्योंकि दूसरी लाइन में आविर्भूत सूर्यमंडल और अनाविर्भूत सूर्यमंडल के सूर्यमंडल पने की अपेक्षा समानता पाई जाती है। जो प्रकट है सूर्यमंडल और जो अप्रकट है, सूर्यमंडल तो है सूर्यमंडल ही है, उसका स्वरूप तो कोई वो प्रकट है या नहीं है उस पर आधारित नहीं है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक जनों के अनुग्रहार्थ गौतम भट्टारक महाकर्म प्रकृति प्रावृत को आदिम नमस्कार करके पर्यायार्थिक नियुक्त शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्रों को कहते हैं। पहले तो नमो जिनानम बता दिया, तो द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन ने उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अभी उसमें से अलग अलग जिनेन्द्रों को अलग अलग अपेक्षा से उसका वर्णन करके पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से उनको नमस्कार करेंगे। अब कहते नमो ओहि जिनानम, अवधि जिनों को नमस्कार हो। तो क्या अवधि ज्ञानी भी जिनेन्द्र होते हैं? आप कहेंगे इसका अर्थ अवधि शब्द अपने में प्रवृत्त है, क्योंकि अवधि इस प्रकार स्वयं वह शब्द कहा गया है, क्योंकि यहाँ अपने में अवधि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना में भी यह अवधि शब्द रहता है, क्योंकि यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के बल से अवधि के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य पाए जाते हैं। कहीं पर मर्यादा के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। हमें ये मर्यादा सहित जानते हैं, इस मर्यादा के लिए भी अवधि शब्द आता है। जैसे मानुष क्षेत्र की अवधि यानी मर्यादा मानुषोत्तर पर्वत है, लोक की अवधि तनुवात पर्यंत है। ये याद है ना, तनुवात वलय, अंतिम वात वलय। हाँ हाँ, घनवात, घनोदधिवात और तनुवात। कहीं पर ज्ञान अर्थ में भी यह शब्द आता है, जैसे अवधि से जानता है, यानी ज्ञान से जानता है। यहाँ पर अवधि शब्द को ये शब्द करना शब को हुआ है, ज्ञान के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, यानी ज्ञान जिनों को नमस्कार हो ऐसा होगा। अभी उस पर शंका समाधान चलेगी तब अभी और क्लियर हो जाएगा अपने। अपने में प्रवृत्त है उसका अर्थ नहीं बताया है, यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के वजह से अवधि के साथ एक तरह सद्भाव असद्भाव रूप स्थापना में यह अवधि शब्द रहता है, क्योंकि यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के बल से अवधि के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य पाए जाते हैं। यह वह अवधि है यानी उस द्रव्य के लिए अवधि शब्द लिया उन्होंने, यानी अभी जिनेन्द्र भगवान की स्थापना की हमने मूर्ति में, तो जिनेन्द्र भगवान के लिए वो अवधि शब्द यूज किया वहाँ। यह वह अवधि है, यह वह बात है, यह वह चीज है, इस अर्थ में वहाँ अवधि लिया। जिस द्रव्य को हम विवक्षित द्रव्य को भी अवधि कहते हैं, ये बात यहाँ होती है। यहाँ लिखा नहीं स्थापित जिनों को नहीं, वो तो उसके अभी क्लियर होगा। ज्ञान जिनों को नमस्कार ऐसा होगा उसमें। अभी हम पूरा ही पढ़ेंगे तो क्लियर होगा जैसा। देखो शंका, मर्यादा अर्थ में रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान के अर्थ में कैसे रहता है? ये ज्ञान के अर्थ में लिया है, अवधि इटसेल्फ उसका ही अर्थ ज्ञान है, अवधि ज्ञान की बात नहीं है। जैसे मतिशुद्ध अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान की बात नहीं है, अवधि इटसेल्फ ज्ञान। देखो ज्ञान के अर्थ में कैसे रहता है? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार असी से सहचरित पुरुष के लिए उपचार से असी कहने में कोई विरोध नहीं आता, उसी प्रकार अवधि से सहचरित ज्ञान को अवधि ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं आता। आगे पढ़ेंगे, अथवा अवाग धानात अवधि, अर्थात जो अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे वह अवधि है। ये अधोगत क्यों कहा पुद्गल को? हाँ हाँ, हाँ तो एक परमाणु तो क्या हुआ? अधोगत पुद्गल, जैसे ऊर्ध्वगमन सो है ना जीव का, वैसे अधोगमन आता है ना कहीं पर पुद्गल के लिए? नहीं आता। अधोगत शब्द का अर्थ क्या आया यहाँ? ऊपर क्या लिखा है? अधोगत ही। देखो, इस व्युत्पत्ति से ज्ञान को अवधिपना घटित होता है। यानी कौन से? पुद्गल को जो जानता है। हमने देखा ना अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो पुद्गल को जानता है, तो ज्ञान को अवधिपना घटित होता है। इस व्याख्यान से मति और श्रुत ज्ञान के अवधित्व का निराकरण किया गया है, उसको अवधि नहीं कह सकते। शंका, पूर्वोक्त व्याख्यान से मतिश्रुत और मनपरे ज्ञान को अवधि से सहचरित होने के कारण अवधि संज्ञा का प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होता है? उसके साथ भी वो अवधि ज्ञान होता है ना? हाँ नहीं, क्योंकि उन ज्ञानों में उस प्रकार रूढ़ी के होने में किसी निमित्त का अभाव है, यानी रूढ़ी से हम उसी को अवधि ज्ञान कहते हैं, जो हम पांच ज्ञानों में अवधि की बात की थी। शंका, अवधि ज्ञान में अवधि शब्द के व्यवहार का क्या निमित्त है? यह अवधि शब्द का व्यवहार वहां क्यों किया है? अवधि शब्द उसी के साथ क्यों जोड़ा है? उसका समाधान, अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि से सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है। यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है। विशेषार्थ, यहां शंका उत्पन्न होती है कि मनपरे ज्ञान भी तो सावधि है, परंतु वह अवधि ज्ञान से नीचे का ज्ञान नहीं है किंतु उससे ऊपर का है। अतः अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है, यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है, यह समाधान ठीक नहीं मालूम होता। इस शंका का समाधान यह है कि मनपरे ज्ञान का विषय चूंकि अवधि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म है, अतः वह भी विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान से नीचे का ही ज्ञान है, इसलिए पूर्वोक्त समाधान संगत ही है। मतिश्रुता अवधि मनपरे केवलानि ज्ञानम, इस प्रकार तत्वार सूत्रादि में जो मनपरे ज्ञान का अवधि ज्ञान से ऊपर निर्देश किया गया है, उसका कारण संयम का सहचारित्व है। देखो कषाय पाहुड़ भाग एक पृष्ठ 17। यानी उसको संयम वहां संयम की जिसको कहते हैं ना, विशुद्धि अधिक है मनपरे ज्ञानियों के, इसलिए उसको बाद में रखा है, परंतु विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान को बाद में रखना है। देखो नीचे कुछ लिखा है, अवाग्धानात अवधि अवग्धानात अवच्छिन्न विषयाद्वा अवधि, ऊपर आई थी ना बात अवग्धानात, या अवच्छिन्न विषय जो होने से वो अवधि है। दूसरी बात, अवधि शब्द अध पर्याय वचन यथा अधक्षेपणम अवक्षेपणम इति अधोगत भूयो द्रव्य विषयो ही अवधि। अधक्षेपण और अवक्षेपण, उसका क्षेपण होता है नीचे, इसलिए उसको अधोगत क्यों कहा, ये शब्द यहाँ लिखा है, अध पर्याय वचन है वो। तीसरी बात, अधस्तात बहुतर विषय ग्रहणात अवधि उच्चते, देवाः खलु अवधि ज्ञानेन सप्तम नरक पर्यंतम पश्यन्ति उपरि स्तोकम पश्यन्ति निज विमान ध्वज दंड पर्यंतम इति अर्थः। हाँ, ये देखो, ये देवों के अवधि ज्ञान का नियम है, अधिक से अधिक नीचे कहाँ तक उनकी अवधि जा सकती है, सातवें नरक तक, परंतु ऊपर की दिशा में कहाँ तक उसका अवधि ज्ञान चलता है, तो अपने अपने विमान के ध्वज दंड तक। ध्वज दंड उस विमान की अपर लिमिट है, ऊपरी मर्यादा, वहां तक उस विमान को कहा जाता है ध्वज दंड। वो विमान कहाँ से कहाँ तक है हम देखते हैं ना, पहला दूसरा स्वर्ग कहाँ से कहाँ तक है उसके विमान, तो पहले डेढ़ राजू में है, मध्य लोक से डेढ़ राजू तक, तो वो जो अपर लिमिट है वो कहाँ है, वो ध्वज दंड तक होती है। तो उन जीवों का अवधि ज्ञान अपने अपने विमान के ध्वज दंड तक चलता है, और नीचे नीचे जैसे जितना ऊपर का स्वर्ग है उतनी अवधि की मर्यादा भी जाता है। कहाँ गया? हाँ, अभी अगला पृष्ठ 14 नंबर। यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा निर्देश नहीं है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का अधिकार है, यहाँ परमावधि सर्वावधि और अनंतावधि का भी ग्रहण नहीं है, क्योंकि आगे इनके पृथक सूत्र देखे जाते हैं। यह मात्र अवधि इतना ही लिया, इसी कारण यह देशावधि का निर्देश है ऐसा समझना चाहिए। इन्हें मात्र यहाँ अवधि कहा तो उस पर से देशावधि है कैसे जाना, वो भी शंकाकर पूछेगा। आपने जो कहा नहीं अवधि ज्ञान की बात चल रही, अवधि ज्ञान जैसे सिद्ध चक्र विधान में आती है बात, ये सिद्धों को नमस्कार करेंगे परंतु वो सिद्ध चक्र में सारे वो अवधि वाले हैं, वो सब अलग अलग उसको ले लेते हैं, वैसे यहाँ दिया है। परमावधि सर्वदा सर्वावधि और अनंतावधि, अनंतावधि यहाँ आई नहीं बात, अभी आएगी शायद आगे तब भी वो देखेंगे। शंकाकार क्या पूछते हैं, नाम के एक देश अवधि से अवधि ज्ञान के या देशावधि ज्ञान के बदले यहाँ अवधि लिख दिया, तो उसमें से वो देशावधि का ही भेद है, ये आपने कैसे जाना लिखा। नाम के एक देश अवधि से देशावधि कैसे जाना जाता है, तो उसमें उस अवधि में से परमावधि सर्वावधि वो क्यों नहीं निकालना, देशावधि को ही क्यों ग्रहण किया है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि भामा से सत्य भामा, जब भामा कहते वो सत्य भामा का शॉर्ट फॉर्म है भामा, तो जब भामा कहेंगे तो सत्य भामा की बात ऐसा समझ सकते हम। सेन से भीमसेन और देव से बलदेव इत्यादि को में नाम के एक देश से भी नाम वालों को विषय करने वाले ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। हमें चार अक्षर ही ऐसा कोई नाम है तो हम उसमें से दो अक्षर लेके बोलाते हैं, जैसे हमारा वो बत्ती जाए ना रत्नदीप, हम उसको दीप कहते हैं। तो ये सत्यभामा की बात यहाँ लिखे, वो कोई देव प्रिया है उसको प्रिया कहते खाली। हाँ महावीर, उसके तो वीर नाम अलग था ही, फिर भी वीर भी कहते उनको। वह देशावधि तीन प्रकार का है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, यानी मध्यम। जो जघन्य भी नहीं उसको अजघन्य कहेंगे, जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो मध्यम के बदले अजघन्य अनुत्कृष्ट कहा उसमें, यानी जघन्य देशावधि उत्कृष्ट देशावधि और अजघन्य अनुत्कृष्ट। उनमें चूंकि जघन्य अवधि विषय की प्रमाण प्ररूपणा के बिना जघन्य देशावधि की प्रमाण प्ररूपणा का कोई उपाय नहीं है, अतः जघन्य विषय की प्ररूपणा करते हुए जघन्य अवधि के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। क्या कहने चाहते हैं, ये जो परमावधि सर्वावधि देशावधि में देशावधि ही जघन्य है, तो पूरे अवधि का जो जघन्य होगा वही देशावधि का भी जघन्य होगा, तो अवधि ज्ञान की ही जघन्य जो कुछ बात है वो यहाँ उसका जो विषय है उसको बताएंगे। कम को जानने वाला वो जघन्य देशावधि कहलाएंगे, अधिक को जानने वाला वो उत्कृष्ट। अभी उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब आता है तो द्रव्यों में छोटे को जानने वाला वो पावरफुल, जैसे एक परमाणु तक जानने वाला वो सर्वावधि, वो सबसे पावरफुल होगा। और कितने कि जैसे हम जाते हैं ना ऑप्टिशियन के पास, आंखें जांच करने के लिए जाते हैं आंख के डॉक्टर के पास, तो क्या करते हैं वो हमको चार दिखाता है, पढ़ो कहता है, तो ऊपर का हम पढ़ते हैं वो बड़ा है, वो पढ़ते तो हमारी नज़र पावरफुल अच्छी है कि नीचे तक हम पढ़ते वो नीचे का भी दिखता है तो पावरफुल है। तो जो छोटे में छोटा दिखेगा उसकी नज़र अच्छी है, जो नीचे का नहीं दिख सकता ऊपर ऊपर का दिखता है तो उसके जघन्य है कहेंगे, वैसे यहाँ लेना। परंतु क्षेत्र के बारे में वो नहीं, क्षेत्र जितना अधिक दूर तक का है उसके उतने दूर तक के पुद्गलों को जानता है तो उसको हम कहेंगे ये पावरफुल है। काल में पूर्व और भविष्य का जितना लंबे काल तक जानेगा उसको पावरफुल कहेंगे। तो जघन्य और उत्कृष्ट भेद में ये बातें आती है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। देखो वह इस प्रकार है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से विषय चार, विषय विषय ने अभी उसका जो हम पुद्गल के बारे में करे, हाँ वह उसके चाहिए। अपने 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 चाहिए। ऊपर क्या लिखा है, विषयो चहुभ्यो दव खेत काल भाव भेयेना। विषय के भेद से विषयो चहु, विषय चार प्रकार के हैं। ऊपर के क्या लिखा है उसका मैं भाषांतर पढ़ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। ऊपर प्राकृत में नीचे से तीसरी लाइन क्या है, तम जहाँ लिखा ना वह इस प्रकार है, विषयो चहुओ, विषय चार प्रकार के हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भेद से विषय चार प्रकार के हैं। तथ जहन्न दव पमाणे भन्न माणे सग विश्वसो वचय, सग ने अपना, विश्वसोपचय क्या है वो मैं बताती हूँ। विश्वसोचय सहिद कम्म विरहिद ओरालिय शरीर दव्ये स विश्वसो वचये घनलोगेण भागे ही दे तथ एक भागो जहन्नो ही दवम होदी, जहन्न अवधि दवम होदी। जघन्य अवधि द्रव्य कितना है उसकी बात चल रहे हैं, तो उसको बताते हैं। अपने विश्रसोपचय सहित, ये उपने नहीं अपने चाहिए। औदारिक शरीर द्रव्य में घनलोक का भाग देने पर, ऊपर कम्म भी रही दे लिया ना, देखो फिर मैं ऊपर का पढ़ती हूँ। तथ जहन्न दव पमाणे भन्नमाणे सग विश्वसो वचय सहिद कम्म विरहिय ओरालिय शरीर दव्वे, यानी कर्म विरहित ऐसा जो औदारिक शरीर है, परंतु कैसा है वो, अपने विश्रसोपचय से सहित है। विश्रसोपचय का अर्थ देखते हैं, औदारिक शरीर का द्रव्य ने औदारिक शरीर के परमाणुओं की संख्या कैसी लेना है, उसमें से कारमान शरीर की संख्या को छोड़ देना है, औदारिक शरीर के जितने परमाणु है उतनी ही संख्या लेना है। या कर्म विरहित लिया ना, कर्मों को छोड़ना और औदारिक शरीर के परमाणु लिया, परंतु केवल औदारिक शरीर के परमाणु की संख्या नहीं लेना, तो उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया, सग विश्वसोपचय, यानी अपने विश्वसोपचय सहित। देखो बात ऐसी होती है, कारमान का परमाणु होगा कर्म का, या औदारिक शरीर का होवे, या तेजस का होवे, या मन संबंधी जो कुछ द्रव्य हो, तो स्निग्ध रुक्ष गुणत्व के कारण वो अन्य परमाणु उसके साथ चिपके हुए रहते हैं। हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारा उनसे नहीं है, फिर भी वो क्यों वहाँ पड़े हैं, स्निग्धत्व या रुक्षत्व के कारण चिपके हुए उस परमाणु के साथ होते हैं। तो एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत विश्रसोपचय के परमाणु पड़े रहते हैं और उन सबका एक स्कंद कहलाता है, तो ये विश्रसोपचय सहित वाला स्कंद कहलाएगा। हमने देखा ये जो पांच प्रकार के शरीर है उसमें औदारिक शरीर के परमाणु सबसे कम है, किसी थोड़ा स्कंद लेंगे तो उसमें औदारिक के परमाणु कम होते हैं, आगे आगे वाले जो वैकिरिक शरीर वाला है उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है, सूक्ष्म ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा होते और मैक्सिमम वो कर्म में होते हैं। कारमान शरीर में छोटे स्कंद में परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम गेहूं लेते हैं उसके टुकड़े करेंगे तो एक कटोरी में वो थूली बनाते हैं ना, क्या फोड़िया क्या कहते हैं, फड़िया थूली थूली कहते हैं ना, तो एक कटोरी में वो उसके कितने पीसेस हो गए, तो उसकी अपेक्षा पर उसका बारीक रवा करेंगे तो रवा का एक एक टुकड़ा है वो कितने ज्यादा रहेंगे ना, उतनी ही उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही कटोरी में उसके नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा हो गए। अब उसका आटा बनाया तो आटे के एक एक कण ज़्यादा हो गए, और उससे भी ज़्यादा कण ये मैदा के हो गए। वैसे ही यहाँ औदारिक के परमाणु कम होते हैं और कारमाण के मैक्सिमम होते हैं, वो बिटवीन है, इन बिटवीन है सारे। तेजस तक तो असंख्यात होते हैं और आगे अनंत होते हैं। देखो फिर विषय के भेद से चार प्रकार पाए जाते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उसमें अपने विसरसोपचय सहित वो ऊपर का, इसीलिए मैंने ऊपर का आपको अलग से बताया था ना उसका ट्रांसलेशन। हाँ उसमें नहीं आया है। और ये तो द्रव्य के भेद से, हाँ लाओ इधर पुराने पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं उसमें। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से विषय चार प्रकार का है, जो मैंने अभी ऊपर से ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाया था ना। विषय चार है ना, चार के आगे लिखना चार प्रकार का है। अब आगे उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, उसमें, हाँ ये व के पहले ही लिखना सब नीचे ही लिखो। देखो विषय चार प्रकार का है फुल स्टॉप। फिर उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, ऊपर लिखा था ना उन्होंने तथा जघन्य द्रव्य प्रमाणे भन्नमाने। देखो उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, अपने, अभी अपने वहां उपने हुए ना उसका अपने करना वो हमने किया था ना पहले ही। आगे है वहाँ अपने विसरसोपचय सहित, फिर वहाँ कर्म से रहित डालना। देखो देखो नहीं, फिर से मैं दोबारा जो हम लिख रहे हैं ना उसमें और भी ऐड करना है। फिर से उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, इसी के आगे लिखो, वो ऊपर का रहने दो वैसा ही। अपने विसरसोपचय सहित कर्म से रहित, विसरसोपचय सहित कर्म से रहित, विसरसोपचय सहित कर्म से रहित व, ये व ऊपर है अभी, वो वह उधर रहने दो, वह अपने विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर द्रव्य में घनलोक का भाग देने पर, उसमें एक भाग प्रमाण जघन्य औधि द्रव्य होता है। अब मैं इसको समझाती हूँ, थैंक यू। अच्छा है ये जूने में है फिर भी कैसे बीच में टल गया पता नहीं। देखो क्या कहते हैं, अभी हमने देखा ना औदारिक शरीर के परमाणु जो है द्रव्य ने क्या, उनकी संख्या, औदारिक शरीर के परमाणुओं की संख्या, केवल औदारिक शरीर के नहीं लेना है, उसके साथ उसका विसरसोपचय भी लेना। यानी औदारिक के साथ उसका विसर सोपचे बरोबर विसर सोपचे सहित औदारिक शरीर विसर सोपचे ने एक एक परमाणु के साथ अलग पुद्गल परमाणु चिपके हुए आते हैं उसको विसर सोपचे कहा जैसे औदारिक शरीर का स्कंद कहेंगे तो उसमें औदारिक शरीर के विसर सोपचे अलग
यानी समझ लीजिए कि ये हमारा जो शरीर है वह तो औदारिक परमाणु से बना हुआ है लेकिन हम ऊपर से पाउडर लगाते हैं मान लो तो क्या हो गया वह भी पुद्गल है वह भी पुद्गल है वो एडिशनल हो गए जिसका हमारे से मतलब शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है वैसे ही जो स्कंद है उन स्कंदों में से अमुक जो परमाणु है वो हमारे शरीर रूप से हमने ग्रहण किए हैं लेकिन वो स्कंद होने के नाते उनके साथ अनवांटेड मेहमान भी साथ में आते हैं तो वो जो उनके साथ में रहने वाले स्कंद के अन्य जो कोई परमाणु है जो हमारे शरीर रूप से तो है नहीं है लेकिन उनके साथ है तो उनको विसर सोपचे कहेंगे वैसे ही कर्म के बारे में भी ऐसा ही होगा कर्मों में भी अमुक कर्म जो है मतलब कार्मण वर्गणा में से अमुक परमाणु हम कर्म रूप से ग्रहण करेंगे और बाकी उनके साथ में मेहमान आते हैं जिनका हमारा कोई संबंध नहीं कम से कम वो कर्म परमाणु जिन्होंने कर्म रूप से ये किया है वह तो निमित्त निमित्त से हम कहेंगे कि हमारे हैं लेकिन वो अन्य जो है वो जो अपने होते ही नहीं है उनको विसर सोपचे कहते हैं वैसे नहीं उसका कोई संबंध ही नहीं ना
वो स्कंद बना है बस
अब क्या है कि जो एक समझ लीजिए कि कर्म परमाणु हमने ग्रहण किया है अनेक तो उसके साथ अनंत परमाणु विसर सोपचे रह सकते हैं वैसे ये शरीर का भी अभी चापनी बात चल रही है उन्हें विसर सोपचे कहा
अनंत ही देखो ये आत्म प्रदेश है ऐसे आकार वाले तो उसमें अनंतानंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं उस प्रदेशों में तो उसमें से जो जो परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं राग द्वेष के निमित्त से उसको तो हम कारमान शरीर कहेंगे परंतु यहीं पर पड़े हुए अन्य जो उसके साथ चिपके हुए जो है वो भले हो गए कारमान वर्गणा रूप से पड़े हो गए अन्य किसी रूप में हो गए विसरसोपचे कहेंगे ये कर्म कौन से हैं तो उसमें से थोड़े ही कर्म रूप परिणमित हुए हैं बाकी जो है वो विसरसोपचे रूप से है ये कारमान के साथ भी विसरसोपचे हैं तो कितने हैं एक एक कर्म परमाणु के साथ सिद्ध राशि से अनंत गुणे ऐसे विसरसोपचे सिद्ध राशि के समस्त कहाँ लिखा है हाँ देखना क्योंकि विसरस उपचय वाला हमने देखा था ना हाँ पहले में है वो शायद हो सकता है मैं भूल गई हाँ सिद्ध राशि से अनंत गुणे है क्या हाँ तो ये देखो अभी यहाँ क्या बात है ये जो कर्म परमाणु है उसके साथ जितने अनंत अनंत एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत विसर सोपचे के परमाणु है और सबका मिलकर जैसे हम कारमान शरीर एक स्कंद कहते हैं वो कैसा है विसर सोपचे सहित वाला ये पूरा ही स्कंद इतना बड़ा है संख्या बढ़ जाती है ना उसकी इसलिए अब यहाँ दो बातें लिखी है विसर सोपचे सहित वाला औदारिक शरीर और विसर सोपचे सहित वाला कारमान अब ये किसको लेना है औदारिक वाले को लेना जितना औदारिक के परमाणु जितने क्षेत्र में है उसका अपना विसर सोपचे अलग उतने ही क्षेत्र में कर्म के परमाणु भी अपने अपने विसर सोपचे सहित है उतना ही क्षेत्र है फिर भी वो विसर सोपचे अलग है ये स्कंद अलग है वो स्कंद अलग है तो यहाँ कौन सा स्कंद लेना है तो अकेले औदारिक का लेना है कारमान से रहित औदारिक लेना पर अकेले कारमान से रहित औदारिक इतनी बात नहीं कही विसर सोपचय सहित कर्म से रहित और अपने विसर सोपचय सहित औदारिक ये इतनी लंबी बात की वो भी निकालना विसर सोपचय सहित कर्म रहित विसरसोपचय सहित वाला जो कर्म का स्कंद है उसको अभी निकाल दो, अकेला औदारिक और उसका विसरसोपचय रखो, ये बात हो गई। और हाँ विसरसोपचय उस क्योंकि औदारिक शरीर के परमाणु के साथ विसरसोपचय जो हो गए वो अलग जाति के होंगे, वो उसके साथ चिपकेंगे, कारमान के साथ वाले जो विसरसोपचय उसको चिपकेंगे, दोनों का स्कंद। हाँ कारमान वर्गणा, कारमान वर्गणा है जो अभी क्योंकि कर्म तो उसी में से बनते हैं, कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणु होते हैं, ये प्रवचन सार में भी बात आई थी, कर्म रूप होने वाले पुद्गल परमाणु। हम पहले पढ़ते तो ये कर्म आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे बाहर से आए और अंदर से चले गए, ऐसा दिखाते थे ना, उसी प्रदेशों में पड़े हुए जो विसरसोपचय है उसमें से ही वो कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप होती रहती है, और ये कर्म भी अकर्म रूप होकर उसी में वही पड़े रहेंगे, वो जरूरी नहीं कि वो छोड़कर चले जा सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, और वो भी वहीं पर पड़े रहेंगे। अभी फिर इसको पढ़ती हूँ, देखो अभी हम जो ऐड किया था ना, पहले तो हमने क्या देखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विषय चार प्रकार का है, उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहना है, अभी अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहना है। जघन्य द्रव्य का अर्थ क्या है, अभी द्रव्य में जघन्य क्या है, ये स्थूल बड़ा स्कंद को जानेगा, सूक्ष्म स्कंद को नहीं जानेगा, जघन्य अवधि ज्ञान की बात चल रही है, मोटे मोटे स्कंदों को जानेगा छोटे को नहीं जानेगा, तो मोटे के लिए औदारिक शरीर वाला स्कंद लेना है, तो इसलिए लिया जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर अपने विसरसोपचय सहित कर्म से रहित, ये विसरसोपचय सहित कर्म ऐसा पूरा एक उसको इन्वर्टेड करो, पेंसिल से करो, उससे रहित यानी अपना यानी कर्म का अपना हो, हाँ इनसे रहित यानी पूरा इन्वर्टेड में डालो, अपना विसरसोपचय सहित कर्म, अपना यानी हमारा नहीं, कर्म का अपना, क्योंकि कर्म का विसरसोपचय अलग है, औदारिक का विसरसोपचय अलग है, तेजस का विसरसोपचय अलग है, ये मनोवर्गना के उसके विसरसोपचय अलग हो गए, हर एक का जो जो स्कंद है पुद्गल का उसका अपना अपना विसरसोपचय अलग अलग है, तो ये कर्म के विसरसोपचय सहित ऐसे जो कर्म है उससे रहित ऐसी जो औदारिक शरीर वर्गना है उसमें भी विसरसोपचय लेना, वो अपना विसरसोपचय से सहित है। ऐसे जो औदारिक शरीर का द्रव्य है यानी उसके नंबर ऑफ परमाणु है जो अनंत में आ जाएंगे, अब उसको वो जो संख्या है उसको घनलोक का भाग देने पर, घनलोक यानी 343 घन राजयोग, हाँ जगत श्रेणी गुणा इसको घनलोक कहते हैं, तो उसका भाग देने पर असंख्यात है, परंतु असंख्यात के बहुत भेद है, आवली भी असंख्यात वाली है, पल्ले भी असंख्यात वाला है, जगत श्रेणी भी असंख्यात है, जगत प्रतर भी असंख्यात है, कौन से वाला असंख्यात, घनलोक वाला असंख्यात। उस घनलोक से भाग देने पर उसमें एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य होता है, इतने औदारिक, अपनी भाषा में अभी कर्म को भूल जाओ अलग रखो, औदारिक शरीर के परमाणु अपने विसरसोपचय सहित लेना तो कितने अनंत अनंत हो जाएंगे, उस अनंत को घनलोक वाले असंख्यात से भाग देना तो कितनी संख्या आएगी, उतने परमाणुओं का जो स्कंद है उतने को ये जघन्य द्रव्य उसका है, अवधि ज्ञान का जघन्य अवधि ज्ञान का वो विषय हो सकता है, वहां तक वो उससे बड़े जानेगा उसमें कोई बात नहीं, मोटे मोटे स्कंदों को जाने उसकी बात नहीं, वो कहां तक जानता है उसकी बात है, जघन्य अवधि का वो जघन्य प्रमाण है, जघन्य द्रव्य कहा उसको, वो पर्वत जितने बड़े चीज को जानेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं ना, वो हम देखते ना वो चार्ट में कहाँ से छोटे में छोटे अक्षर पढ़ते उस तक हमारी मर्यादा है, जो वहां तक पढ़ता है वो बड़े अक्षर को तो पढ़ेगा ही, तो जघन्य हम लोअर लिमिट बताते हैं उसकी, तो जघन्य द्रव्य उसको कहना है। जघन्य अवधि ज्ञान का वो जघन्य द्रव्य है, या अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य कहो तो भी चले। तो उसमें एक भाग देने पर एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य होता है। शंका, विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर भाज्य राशि, जिसको भाग देना है उसको भाज्य राशि कहते हैं, और घनलोक ही भागाकार होता है, यह कहाँ से जाना जाता है? ये द्रव्य की संख्या आपने निकाली तो ये भागहार है, और ये भागा जिसको भाज्य है ये आपने कहाँ से जाना? कहते यह आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। औदारिक शरीर विसरसोपचय सहित जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है, उनमें किसे घनलोक से भाजित किया जाता है? तो उसका समाधान, न तो जघन्य द्रव्य को न उत्कृष्ट द्रव्य को घनलोक से भाजित किया जाता है, किंतु जिन भगवान से देखा गया है स्वरूप जिसका यानी यथा योगी जैसे जिनेन्द्र भगवान ने जाना है, ऐसा तद व्यतिरिक्त द्रव्य, तद व्यतिरिक्त ने जो जघन्य भी नहीं जो उत्कृष्ट नहीं, इनके अलावा, तद व्यतिरिक्त का अर्थ क्या है? इनके अलावा जो कुछ है कौन सा है? वो जो जिनेन्द्र भगवान ने जाना है उस द्रव्य घनलोक से भाजित किया जाता है। कारण कि क्षपित व गुणित विशेषण से विशिष्ट द्रव्य के निर्देश का अभाव है। क्षपित व गुणित, क्षपित यानी हम देखते हैं भागाकार किया हुआ या उसमें से कुछ कम किया हुआ, या गुणित यानी अधिक मात्रा में, ऐसा कुछ वहां कहा नहीं है कि इसको इतने गुणा करो या ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। संख्या में ही यह नियम है, ऐसा प्रत्यवस्थान यानी समाधान करना भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ भी संख्या का अधिकार है। यानी यहाँ तो संख्याओं की ही बात चल रही है, कितनी संख्या में द्रव्य लेना, ये संख्या का ही अधिकार है। कोई ऐसा शंका करेगा कि संख्या में ये हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ भी संख्या का ही अधिकार चल रहा है। शंका, हाँ, जैसे अनंत को हमने असंख्यात से भाग दिया तो जो कुछ द्रव्य का प्रमाण आया वो जघन्य हुआ। हाँ हाँ, वही एक भाग ही आया ना। जब किसी चीज को भाग देते हैं, जैसे हमने 100 को 20 से भाग दिया तो प्रमाण आया 5, तो एक भाग का प्रमाण 5 आया। तो शंकाकार पूछता है, जघन्य अवधि ज्ञान क्या इसी द्रव्य को जानता है अथवा अन्य को भी जानता है? यदि इसे ही जानता है तो अपने अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित जघन्य द्रव्य स्कंध से एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक इत्यादि क्रम से स्थित स्कंधों का ग्राहक न हो सकेगा? और ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने क्षेत्र के भीतर स्थित अनंत भेदों से भिन्न स्कंधों के ग्रहण न होने का विरोध है। ग्रहण न होने का विरोध है, ग्रहण हो सकता है, अलग अलग बड़े छोटे स्कंदों का भी ग्रहण होता है। यदि परमाणु अधिक स्कंदों को भी वह जानता है, यानी एक परमाणु से अधिक स्कंद को भी जानता है, तो यही जघन्य अवधि द्रव्य न होगा, क्योंकि अन्य भी जघन्य अवधि द्रव्य देखे जाते हैं। उसका समाधान, क्योंकि जो जितने क्षेत्र में जानता है उतने में इतने ही द्रव्य को, इतने ही छोटे स्कंद को जानेंगे कि अलग अलग उसमें एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक उसको भी जानेगा, ऐसा प्रश्न है। तो उसका अभी समाधान दे रहे हैं। ऐसा कौन कहता है कि जघन्य अवधि द्रव्य एक प्रकार का है किंतु वह अनंत विकल्प रूप है, अनंत भेद रूप है? उन अनंत विकल्प रूप जघन्य अवधि चाहिए, अविधि हुआ है, अवधि स्कंधों में यह स्कंध अति जघन्य कहा गया है। कम से कम छोटा, हमने देखा था ना हम कौन सी लाइन पढ़ सकते हैं छोटे में छोटी, तो उसको बताएंगे तो ऊपर के तो पढ़ ही सकता है। तो अनंत जघन्य अवधि की मर्यादा जानने की कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है, यहां से यहां तक। पांच परमाणु के स्कंद से लेकर मान लेते 100 परमाणु के ऊपर के कितने भी हो सकते, तो ये अनंत भेद हुए। तो हम वो पांच वाला कहेंगे ना, पांच वाला भी है, छह वाला भी है, सात वाला भी है, आठ वाला भी है, दस वाला भी है, ऐसा नहीं कहेंगे। लोअर लिमिट कहेंगे तो ऊपर तो जा नहीं सकता है। द्रव्य में ये उल्टा प्रोपोर्शन है, क्षेत्र काल में जितना बड़ा द्रव्य क्षेत्र है, जितना बड़ा काल है, उतना अवधि ज्ञान भी पावरफुल है। परमावधि की तो बात ही नहीं है, उसमें तो परमावधि सर्वावधि उससे भी बड़ा है, वो तो परमाणु तक को जानता है, वो तो कारमाण के परमाणु तक को जानता है, वो तो बात पर उसमें आएगी। अभी हम देशावधि की बात चल रही, परमावधि का अलग बताएंगे। देखो ये जघन्य स्कंद कितना बड़ा है उसको बताया, बराबर। जघन्य में, जघन्य स्कंद में कितने परमाणु है उसकी बात बता दी। इस स्कंद से एक दो तीन आदि परमाणुओं से न्यून स्कंद जघन्य देशावधि के विषय नहीं है। ये अपना उदाहरण फिट बैठता है आंखों की वो चार्ट में, नीचे की लाइन हम वहां तक पढ़ सकते, उसके नीचे नहीं पढ़ सकते। वैसे ये इसकी मर्यादा इस स्कंद तक जानने की, इतने परमाणुओं के स्कंद तक जानने की इसकी मर्यादा है, उसके नीचे के स्कंदों को यह नहीं जान सकते। जघन्य देशावधि की बात चल रही है। हाँ, जघन्य देशावधि के विषय बहुत है, उसमें से छोटे में छोटा कौन सा स्कंद जानता है उसकी बात चल रही है। द्रव्य में इनवर्ट प्रोपोर्शन लेना, क्षेत्र में छोटे क्षेत्र को जानता है वो जघन्य अवधि, बड़े क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र तक जानता है वो बड़ा अवधि, उत्कृष्ट अवधि कहेंगे हम इसको। यहाँ पर द्रव्य में जितने अधिक नंबर ऑफ परमाणु को जानता है, अभी उसकी लोअर लिमिट है, इतने परमाणु हम यहाँ मान लेते हैं, 1000 परमाणु के स्कंद को जानता है, उसके नीचे 999 वाले स्कंद परमाणु के स्कंद को नहीं जानेगा, तो ये उसकी जघन्य द्रव्य की मर्यादा हुई। जो 1000 वाले को जानता है वो तो 4000 वाले को तो जानेगा ही ना, बड़े स्कंदों को जानने में कोई रुकावट नहीं है। कम से कम कहाँ तक के स्कंद को जानता है, यहाँ फिर पूर्ण है। देखो इस स्कंद जो अभी हमने स्कंद देखा, कौन सा, विश्रसोपचय सहित औदारिक परमाणु की जो संख्या है उसको घनलोक का भाग देंगे, तो एक भाग का जो प्रोपोर्शन आया है, उतने नंबर ऑफ परमाणुओं का जो स्कंद है वो उसकी लोअर लिमिट है, उसके नीचे का नहीं जानेगा, उससे कम परमाणुओं को। ऊपर के विकल्प अनंत हो जाएंगे, उसमें एक ज्यादा, दो ज्यादा, चार ज्यादा, देशावधि उसको भी जानता है ना, जघन्य देशावधि है वो। देखो देखो जघन्य लिमिट है ना अवधि ज्ञान की, कम से देखो यहाँ अभी लिखा ना पहली लाइन में, उन अनंत विकल्प रूप जघन्य अवधि स्कंदों में यह स्कंद अति जघन्य कहा गया है। उससे छोटा नहीं जानेगा, वही तो बात बता रही हूँ मैं कब से, उससे कम परमाणु वाले स्कंद को। अभी स्कंद का साइज लेना आप और उसमें परमाणु की संख्या लेना, वो भी अलग होती है ना। जैसा अभी ये जो हमने यहाँ रबर पकड़ा है, स्कंद तो इतना ही है और उसमें परमाणु की संख्या वेरिएबल होगी, अनंत वेरिएशंस होंगे उसमें, जैसे अनंत परमाणु है, अनंत में भी और असंख्यात मिला दो, उतना भी स्कंद इतना ही हो सकता है। इस स्कंद में हम उसका वॉल्यूम लेंगे और परमाणुओं की संख्या लेंगे, तो कम से कम कितने परमाणुओं से ये स्कंद बनाए उसको यहाँ बता रहे हैं। अभी देखो इस स्कंद से एक दो तीन आदि परमाणुओं से न्यून स्कंद इसमें से परमाणुओं की संख्या कम कर दी उन्होंने, उससे न्यून स्कंद उनके ज्ञान का विषय नहीं है। न्यून यानी कम, जघन्य देशावधि के विषय नहीं है। देशावधि के ऊपर ऊपर के भेद है वो उसको जानेंगे, यहाँ जघन्य देशावधि के भेद की बात चल रही। देशावधि में भी असंख्यात प्रकार है, हो देशावधि में भी, वो तो भी बात आएगी आगे, क्योंकि वे जघन्य अवधि के विषयभूत द्रव्य स्कंद के बाहर अवस्थित है। अर्थात जो जघन्य द्रव्य कहा है उससे एक कम प्रदेश वाले स्कंद को, ये बात यहाँ क्लियर होती है ना, उसमें से एक कम प्रदेश वाले स्कंद को जघन्य अवधि ज्ञान विषय नहीं करता। अब कहते हैं ये तो जघन्य की बात हुई, शंकाकार पूछता है जघन्य अवधि के विषयभूत, जघन्य अवधि यानी जघन्य अवधि ज्ञान जिनको जानता है, ऐसे विषय जो है उनका उत्कृष्ट स्कंद का प्रमाण क्या है? तो समाधान, जघन्य अवधि क्षेत्र के भीतर, देखो उसमें भी क्षेत्र की लिमिट डाली, खाली ऐसा नहीं कहा बड़े बड़े स्कंद को जानेगा, वो बड़े स्कंद मान लेते उनके अवधि क्षेत्र के बाहर हो गए तो नहीं जानेंगे, तो उसके लिए भी कंडीशन प्रोवाइड है, क्या? जघन्य अवधि क्षेत्र के भीतर जो पुद्गल स्कंद समाता है वह उसका उत्कृष्ट द्रव्य है। क्या बात है, यानी मान लेते हैं एक माइल तक उसका अवधि क्षेत्र का है, अवधि क्षेत्र है जघन्य मान लेते हैं, तो उसमें जो बड़े से बड़ा पुद्गल स्कंद समा जाएगा वो उनके अवधि का विषय हो सकता है। हाँ उतना होगा, हाँ उससे सूक्ष्म को नहीं जानेगा, उससे बड़े को जानने में कहाँ विरोध है नहीं, जो नीचे की लाइन पड़ता है वो ऊपर के सभी लाइन पड़ेगा ना, कितना बड़ा पड़ेगा। हाँ दो लिमिट इसलिए दिए क्योंकि वो क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। हाँ देखो जघन्य अवधि क्षेत्र के भीतर जो पुद्गल स्कंद समाता है वह उसका उत्कृष्ट द्रव्य है, उससे एक दो तीन आदि अनंत परमाणु तक अपने उत्कृष्ट द्रव्य से संबद्ध वाले होते हुए भी जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वे अवधि ज्ञान के उद्योत से बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ये क्षेत्र उससे बड़ा हो जाएगा, अपने अवधि क्षेत्र में बड़ा सा बड़ा स्कंद होगा उसको तो जानेंगे, क्योंकि अवधि की भी लिमिट है ना, जैसे आड़ी लिमिट है ऊपर नीचे भी लिमिट होगी कि नहीं उसकी, तो उसके लिमिट में जितना बड़े से बड़ा स्कंद है उसको तो जानेंगे, एक प्रदेश भी उससे बड़ा है उसको नहीं जानेंगे। इस प्रकार जघन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य की प्ररूपणा की गई है। बोलो अब क्या कहते हैं। क्या अभी ये द्रव्य का समाधान कहाँ दिया है? हाँ वो तो आगे आएगी, वो तो क्षेत्र की लिमिट बताएंगे, यहाँ द्रव्य में बड़ा उत्कृष्ट लिमिट हम बता रहे हैं। उत्कृष्ट जघन्य तो हमने देखा औदारिक को वो असंख्यात लोग से, उत्कृष्ट कितना है? अभी मान लेते हैं जघन्य देशावधि है, वो इतने रूम में इतना ही जान सकता है, यही उसका क्षेत्र है, क्षेत्र की लिमिट, क्षेत्र में इससे बाहर का क्षेत्र वो नहीं जान सकता। ये पूरे रूम जितना स्कंद वो जान सकेगा, हाँ उससे बड़े बाहर वाले को नहीं जाने। हाँ वो उसमें भी वो पूरा जघन्य में उतना क्षेत्र में वो पसंद नहीं चाहिए। देखो जघन्य अवधि अभी इतनी इसको जान रहा है, इससे छोटे स्कंद को नहीं जानेगा, और बड़े कैसे बड़े स्कंद कितना, ये उसका क्षेत्र की लिमिट है, तो ये रूम रूम इतके बड़े स्कंद को भी जानेगा, इस सहज है ना उसका, उसमें कोई ऐसी अटपटी बात नहीं है उसमें। इससे बड़ा स्कंद होगा तो कैसे जानेगा, क्योंकि वो रूम से बाहर चला जाएगा, उसका क्षेत्र भी मर्यादित है। देखो अब ये तो द्रव्य की बात हुई, अब क्षेत्र की बात। ये हमने तो ज्ञान मार्गणा में तो कितने बड़े बड़े गणित किए, इसमें याद है प्रेरणा बिंद तक, इसमें कुछ नहीं अभी, अच्छा है, ज्यादा डिटेल है तो और अच्छा है। तो ये उनका सबका आपस में प्रोपोर्शन क्या वगैरह, उसके बहुत सारे गणित किए थे। अब ये फिर आएगी बात तभी जानेंगे। अब देशावधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र की प्ररूपना की जाती है। जघन्य क्षेत्र ने कम से कम कहाँ तक, उतना तो अधिक से अधिक यानी जानेगा ही उतने क्षेत्र तक। जघन्य अवधि ज्ञानी, उसका कम से कम क्षेत्र कितना है और फिर अधिक से अधिक कितना है उसको कहेंगे। उच्छेद घनांगुल में यानी अंगुल में, वो कौन सा वाला अंगुल है, उच्छेद, वो भी घनांगुल, उसकी बात करेंगे। उच्छेद घनांगुल में पल्योपम के असंख्यात भाग का भाग देने पर एक भाग प्रमाण देशावधि का जघन्य क्षेत्र होता है। ये अंगुल के भी कितने भेद होते हैं, कौन कौन से, प्रमाण अंगुल, हाँ सूचंगुल यानी वही तो, हाँ सूचंगुल कहो या वो अंगुल कहो एक ही बात है। आत्मांगुल, हाँ प्रमाण अंगुल और उच्छेद अंगुल। तो उच्छेद अंगुल किसको कहना, बोलो 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 आप बोलो, हाँ सूचंगुल कहो उच्छेद अंगुल कहो एक ही बात है ना। कौन सा हिस्सो, आठ यव का जो अंगुल होता है ना, आठ यव का नहीं, प्रमाण अंगुल तो अवसर्पिणी के पहले चक्रवर्ती के जो अंगुल का प्रमाण है वो प्रमाण अंगुल है, वो 500 गुना बड़ा होता है, 500 गुना होता है। तो ये जो इतने इतने अनंत ये परमाणुओं का ये जो सन्ना सन्ना अवसन्ना सन्ना सन्ना वगैरह हो जाए, रथ रेणु त्रट रेणु, उत्तम भोग भूमि जघन्य भोग, मध्यम भोग भूमि जघन्य भोग भूमि कर्म भूमि, उसके बालों की जो ये आठ आठ गुना जो सारा देखा था हमने, फिर जीव फिर वो लीक फिर जीव फिर यव और आठ यवों का एक अंगुल, उसको कहते हैं उच्छेद अंगुल। अंगुल गुना अंगुल कहलाता है प्रतरांगुल, और प्रतरांगुल को फिर से अंगुल से गुना करूंगा तो घनांगुल, यानी अंगुल का घन उसको घनांगुल कहते हैं। ये कौन से वाला अंगुल लेना है, तो वो आठ यव का एक अंगुल वाला जो है उसको लेना है, उसको सूचिंगुल भी कहते हैं। तीन प्रकार हमने देखे ना, प्रमाण अंगुल, आत्मांगुल, आत्मांगुल जैसे हमने देखा था अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में, ये तो शरीर की अवगाहना कम ज्यादा होती है तो उसकी उंगली की भी चौड़ाई भी कम ज्यादा होगी ना, तो अपनी अपनी जो है उसको आत्मांगुल कहते हैं। इस आठ यव का है जो एक अंगुल कहेंगे वो उच्छेद अंगुल, जिसको सूचंगुल भी कहते हैं सामान्य से, फिर उसका घन करो तो घनांगुल होता है। तो घनांगुल में पल्ल के असंख्यात भाग भाग देना, ये इसका गणित कल समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो। अश्विन भाई